शांति। प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज का प्रश्न नंबर है 112। 110 में यूल सोल का प्रभाव देखा और 111 में परिवेशता वाली आत्मा होगा और आज का है भय और चोरी। तो इस यज्ञ में जो विघ्न पड़ते हैं तो उनको कैसे निपटे, बाबा पूरा सोल्यूशन देता है। तो आज भय और चोरी से कैसे मतलब मुक्त हो जाए ये युक्ति बताते हैं। तो प्रश्न है, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, तो उससे कैसे बचे? तो बाम दादा का उत्तर है, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उनमें जैसे अग्नि में घी डाला या तेल डाल दिए, भड़का देते ना क्रोध अग्नि को। तो जैसे अग्नि में तेल डाला, आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है, हमको कोई परवाह नहीं है। तो जो करता है उसको साक्षी होकर और शांति की शक्ति दो, फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं, डर गए तो मर गए। वो बाबा ने मर गए नहीं बोला, डर गए, हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हें हिम्मत दिलाता है, अगर हम डर जाते तो उन लोगों को हिम्मत दिलाता है। इसलिए भय में नहीं आना चाहिए, ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है, अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम पर। तो ये बाबदादा का उत्तर था कि चोरी और जो भय है उससे कैसे मुक्त हो जाए। तो बाबा ने तीन युक्तियां खास बताई कि एक तो योग की शक्ति दो, योग की शक्ति और शांति की शक्ति और साक्षी दृष्टा की स्थिति। तो ये हम ब्राह्मणों में होना चाहिए, ऐसी कोई स्थितियां हो जाती हैं। तो जैसे कोई संसार में घटनाएं होती है, कोई आतंकवादी लोग विमान को हाईजेक कर लेते हैं, तो हाईजेक कर लेते हैं तो वो बंदूक के नोक पर सबको डरा देते हैं, अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसे शूट कर देते हैं। तो वहाँ शांति की शक्ति बहुत जरूरी होती है। और अगर नानभी के है तो वो तो अपनी उन्हें तो पता नहीं शांति की शक्ति क्या होती है, मतलब वो पता है कि शांत रहना ये ठीक है, अपने को बचना है। लेकिन कोई कोई होते शांत नहीं रहते, बोल देते तो फिर उनको एक नुकसान उठाना पड़ता है, जान गंवानी पड़ती। हाँ तो ऐसा क्योंकि उनको कोई रहम नहीं होता ना, ऐसे लोगों में रहम नहीं होता। तो ऐसी घटनाएं हमको कभी सुनने मिलती है, देखने मिलती है। तो एक बार वेदांती बहन जी ने अनुभव सुनाया था कि साउथ अफ्रीका में ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि बाबा के बच्चे जो नए नए होते उनको मतलब सेंटर पर आने के लिए जो एक गैंग होता है ना, वो अल्फा गैंग जो उग्रवादी, वो लोग आने नहीं देते। हाँ तो उन्होंने अनुभव सुनाया था कि उसके लिए हम पहले से ही मेडिटेशन का प्रोग्राम रखते हैं, जो भी आत्माएं आती है उनके लिए खास आह्वान करते हैं कि वो निर्विघ्न आए और हमारा सेंटर भी निर्विघ्न चले। तो ऐसी वहाँ घटनाएं होती है अफ्रीका में। तो ये जो चोरी और भय, ये है छोटी घटना लेकिन बड़ा डर बिठा देती है। हाँ ऐसी घटनाएं वहाँ बताए थे। तो चोरी और भय का जो माहौल है, एक डरावना रहता है कि चोर का काम तो एक चोरी करना है, और साथ में साथ वो डराते हैं पब्लिक को, क्योंकि जैसे कोई रात में डाका डाल देते हैं तो सभी को बंधक बना देते हैं। तो वहाँ फिर वो जो भी उनको चाहिए वो ले लेते हैं, जो भी सामान जेवर पैसे आदि। लेकिन वो डरा भी देते हैं क्योंकि उनको अगर कुछ बोलेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे चीज़ें, इसलिए वो डरा देते हैं। और फिर डर के कारण वो जो भी चीज़ें दे देते हैं कि भले ले जाओ लेकिन जान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी घटनाएं होती है चोरी की। तो एक साल 15-20 साल पहले की बात है, यहाँ भी माउंट आबू में ऐसी सक्रिय हो गया था चोरी की घटनाएं। हम सभी मधुबन वाले सब बाबा के बच्चे शांति बन जाते थे बाबा मिलन, और घर खाली हो जाता था, जो पुराने ही रहते थे बुजुर्ग। तो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो सुरक्षा के हेतु से यहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सभी मधुबन निवासी हर डिपार्टमेंट के एक भाई तो होना ही चाहिए सिक्योरिटी करने के लिए। हाँ, रात को पहरा चक्कर लगाते थे। और जैसे बाबा ने भी शुरू में सिक्योरिटी का जो रखा है, हैदराबाद सिंध में ही, कराची में ही, बहनों के ही रात भर पहरा में लगा दिया करते थे यज्ञ सुरक्षा हेतु। वैसे यज्ञ रक्षक तो बाबा है ही, वो तो विघ्न आने नहीं देंगे। फिर भी छोटी मोटी कुछ घटनाएं हो जाती है, उसके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो माउंट आबू में ऐसा हो गया था। अच्छा, 1999 की बात है, ये हुई थी। तो उस समय सभी डिपार्टमेंट का एक एक आदमी होता था और शेड्यूल लगा दिए जाते थे कि आपको इस टर्न में पहरा देना है। और वो सिस्टम ज्ञानसौर में अभी भी तक चलती थी 2020 फरवरी, लेकिन अभी कोरोना के कारण वहाँ तो खत्म हो गया, क्योंकि बाबा मिलन यही हो रहा है ना अपने अपने स्थान पर। तो ऐसी ड्यूटी लगा, तो ये हुई थी घटनाएं। और चोरी भी करते हैं चोर लोग, चोरी करने के लिए भी गुण चाहिए चोर लोग, निडरता चाहिए, निर्भयता चाहिए। और वो जो सक्सेस हो जाता है एक बार, पहले छोटी चोरी करेंगे फिर बड़ी, तो उनको सक्सेस मिलता है तो वो नया नया इन्वेंशन निकालते हैं चोर लोग चोरी करने के। और वो उनका कारो मतलब जो धंधा है चलता रहता है, क्योंकि उनको दूसरा काम करने में मजा नहीं आता। चोरी, हाँ चोरी सहज है बस, भले उसमें रिस्क बहुत है, हाँ फिर भी वो चोरी कर ही लेते हैं। हाँ जी, हाँ कितने बार जेल में जाएंगे फिर भी आने के बाद भी वही संस्कार उनके अंदर भरा हुआ होता है। और हाँ तो चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे मोबाइल चोरी, पर्स चोरी, पैसे चोरी। हाँ जैसे पर्स उठा लेते हैं किसी का, सामान की चोरी हो जाती है। और आजकल जो इंटरनेट में भी चोरी होती है, डाटा चोरी, डाटा चोरी। हाँ तो अभी कल भी एक न्यूज आई थी कि जो चाइना है भारतीयों के जो डाटा चोरी करता है, तो कल भी कुछ एप्स बंद कर दिए, 40 एप्स बंद कर दिए। तो ये डाटा चोरी मोबाइल के माध्यम से ही डाटा चोरी होता है आजकल। हाँ बैलेंस खाली हो जाता है। तो इस प्रकार ये चोरी के भी अनेक प्रकार हैं। और हाँ जैसे नेकलेस चोरी भी हो जाती। हमने एक वीडियो देखा था कि एक माता जी, एकदम बुजुर्ग माता जी है और जा रही है आराम से, दूसरे बाइक वाले आते हैं और चेन छीन लेते हैं नेकलेस। तो माता जी दौड़ रही है और वो गिर जाती है और वो भाग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आजकल हो रही है नेकलेस चोरी की। फिर मंदिर में जाते हैं तो चप्पल और जूते चोरी ना हो जाए, ये डर रहता है। भले पूजा पाठ करेंगे लेकिन उनका मन बुद्धि चप्पल जूते में रह जाएगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के, और कई लोग बच्चा चोरी कर लेते तो फिर फिरौती मांगते हैं, जो माँ बाप को किडनैप कर लेते हैं। तो कितना मतलब एक आतंक का माहौल हो जाता है, बहुत डर। एक तो पैसे उनको लौटा देना होता है और एक तो ऊपर से बच्चे की जान खतरा ना हो जाए, वो इसलिए जितना पैसा मांगते हैं वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार चोरी का ही चलता है। बाइक चोरी भी आजकल होती है। तो इस प्रकार चोरी का एक डर बना हुआ होता है आम आदमी में, जिसे एक कुछ चोरी नहीं हो जाए, असुरक्षितता महसूस होती है। जैसे बैंक बैलेंस है और कुछ आजकल वो दूसरे लोग फोन करते हैं कि आपका अभी नहीं, वो कार्ड चेंज करना है तो नंबर बताओ, नंबर बता देते, कोई ऐसे फंस भी जाते हैं तो ऐसी वारदात होती है। तो ये डर बना हुआ होता है, तो ये डर के लिए खास बाबा ने हमें युक्तियां दी कि जैसे साक्षी दृष्टा, अगर ज्ञान अगर हमारे अंदर है, परिपूर्ण है, तो ये चोरी चोरी ही तो कर रहे हैं ना, क्या जाएगा संस्कार या गुण है शक्तियां, ये तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। चीजों की चोरी हो सकती है, लेकिन जो गुण और शक्तियां इनकी चोरी नहीं हो सकती। तो इसमें हमें अपनी स्थिति मजबूत रखनी है, शांति की शक्ति से और योग की शक्ति से। और दूसरी एक घटना याद आती है कि हम 2013 में गए थे, साइकिल यात्रा हुई थी, तो असम, तो असम के बाद फिर उधर मणिपुर जाना हुआ। तो वहाँ के बहन जी ने एक अनुभव सुनाया था कि इम्फाल में, इम्फाल का जो बड़ा सेंटर है वहाँ, वहाँ जो अल्फा उग्रवादी सक्रिय होते हैं, तो उसके पहले कि दादी रतनमणि गए थे तो बड़ा प्रोग्राम किए थे, मेगा प्रोग्राम। तो वहाँ मतलब नाम हो गया था ब्रह्मा कुमारीज का कि ब्रह्मा कुमारीज भी बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकती है, और बहुत पैसा खर्चा किया था। तो ये वहाँ के जो उग्रवादी लोग हैं उनको पता चल गई थी ये बहुत पैसे वाले लोग हैं ब्रह्मा कुमारीज तो उन्होंने वारंट थमा दिया ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कि हमें इतने लाख चाहिए और इस डेट को इस समय हमें चाहिए, क्योंकि उनको देना ही पड़ता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है या कोई जो बड़े सेठ है उनको ये वारंट देते हैं और उनको देना ही पड़ता है, अगर नहीं दिए तो फिर शूट कर देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका भी नंबर आ गया था, तो फिर वो बहन जी ने, जो बड़ी बहन जी शिला बहन जी गुवाहाटी, उनको फोन किया और उन्होंने फिर मधुबन में फोन किया दादियों को। तो दादियों ने फिर कहा कि ये तो अच्छी घटना नहीं है, तो चलो बाबा से ही पूछते हैं। तो संदेश लिया गया और दादी गुलजार के द्वारा संदेश आया, तो संदेश में कहा गया कि देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। तो बाबा ने सावधानी दी थी, बोले कि किसी डायरेक्ट नहीं दो, किसी के द्वारा थ्रू देना और उनको समझाना कि ये यज्ञ कैसे चलता है, कैसे ब्राह्मणों के पाई पाई से चलता है, ऐसा समझाना। तो उन्होंने एक माता को तैयार किया था कि निडर लोकल माता उनकी भाषा में बोल सके ऐसे, और उन्होंने फिर 50,000 उनको दिया गया था और उनको पूरा बाबा की टोली और जो ज्ञान दिया गया और वो संतुष्ट हो गए कम पैसे में 5 लाख का कुछ डिमांड था लेकिन वो 50,000 में हो गया था। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है छोटी मोटी। तो ये डर तो कई सेंटरों पर होते हैं ऐसे, तो तो ऐसी घटनाएं होती है। अच्छा, वो पूर्वोत्तर में ऐसी ज्यादा सुनने को मिलती है, जैसे मेघालय है या नागालैंड है, इसमें ऐसे सक्रिय होते हैं। वो दूसरी बात सुना था कि जो हम गए थे उधर, तो डिमापुर आता है नागालैंड में, तो वहाँ शाम के समय गए 4:30 ऐसा कुछ, तो वो खरीदी करने में मना कर रहे थे क्योंकि वो 5 बजे उनको बंद करना होता है उस समय, 2013 की बात है, लेकिन अभी पता नहीं, लेकिन 5 बजे उनको दुकानें बंद करना ही है, फटाफट शटर गिराते हैं, क्योंकि वो जो सक्रिय गैंग होता है वो आ जाता है और जहाँ भी खुला रहा वहाँ टाका डाल के चला जाता है। तो उस जो नागालैंड में ऐसे सुनने को होते हैं वारदातें, और मेघालय में भी ऐसा हुआ था बीके भाई के साथ कि उन्होंने पूरा पैसा जमा नहीं किया था और उनको फिर शूट कर दिया गया था। तो ऐसा होता है, तो ऐसी घटनाएं होती है, तो हाँ, तो ऐसी अनेक घटनाएं यज्ञ में होती है। तो चोरी और भय से हमें कैसे बचना चाहिए, तो इसकी खास युक्तियां बाबा ने हमें बताई है, तो इसके लिए पहली मेन है साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत जरूरी है। तो साक्षी दृष्टा में पहला तो सबसे स्वयं से साक्षी दृष्टा कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मैं देह से नारी हूँ। माना अपने आप को ही थोड़ा अलग करके देखना कि मेरा जैसे पार्ट कैसे चल रहा है। जैसे कोई दूसरा डबल रोल करते ना, डबल रोल होता है तो एक डबल रोल इसमें मिलाना होता है कि मैं खुद आत्मा तो हूँ लेकिन अपने ही पार्ट को खुद देख रही हूँ कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो स्वयं के पार्ट से भी साक्षी दृष्टा, फिर सर्व के पार्ट से। सर्व के पार्ट्स में जैसे ब्राह्मण परिवार को या संबंध, जो ब्राह्मण जो संबंधी है उनके पार्ट से भी एकदम न्यारा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है कि सर्व। तो सर्व के पार्ट से समाज के जो भी संबंध है उन सब के पार्ट से न्यारा। फिर सृष्टि से, सृष्टि से भी साक्षी दृष्टा। सृष्टि में पांच तत्व आ गए, प्रकृति से भी एकदम डिटैच, कोई भी तत्व हमें प्रभावित न कर सके ऐसे। फिर है साधनों से, जो भी साधन है वो भी साधन यूज करते हुए भी एकदम साक्षी दृष्टा। साधन तो ये सेवा के लिए है, तो ये साक्षी दृष्टा बनने की युक्ति। और एक है सेवा से, सेवा से साक्षी दृष्टा। तो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन किसकी सेवा है? हाँ, भगवान की सेवा है, विश्व सेवा है। इस भाव से सेवा हम करें तो अगर मैंपन मिला देते हैं सेवा में तो वो सेवा नहीं रहती, उसका फल कम मिलता है। तो बाबा ने बोला कि इस सेवा से भी एकदम साक्षी दृष्टा होना है। फिर साक्षी दृष्टा बनने के लिए हमें कुछ संकल्प भी लेने चाहिए। जैसे बाबा मुरली में रोज आते ही है, हर दिन की मुरली में, तो जैसे पहला है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी, और जो गीता सार इसमें दिखाया जाता है वो बुद्धि में होना चाहिए। तो इससे भी हम साक्षी दृष्टा बने रह सकते हैं। फिर दूसरा, बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। तो मतलब फिक्स है, हर एक का रोल इसमें फिक्स है, तो हमें एकदम साक्षी बनने में मदद मिलेगी। और ड्रामा रिपीट हो रहा है, कल पहले जो हुआ था फिर से हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। तो ये स्मृति अगर रहती है तो भी साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। फिर सभी निर्दोष है, ड्रामा में सभी निर्दोष है, सभी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं, इस स्मृति अगर रही तो भी हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, माना कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इसमें ये संकल्प आना चाहिए कि ये हिसाब किताब रहा होगा इन आत्माओं का, पूर्व जन्मों का, तो ये भी सब चुकतू हो रहा है। तो और सभी प्रश्न से पार रहेंगे साक्षी दृष्टा वाले, कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये कुछ संकल्प अगर स्मृति में रखते हैं तो हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। तो एक इसके ऊपर एक कहानी है ना कि सभी ने सुनी होंगी, भोला भक्त और भगवान की, कि भक्त को रहम आ जाता है भगवान के ऊपर कि खड़े खड़े भगवान रहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये थकते क्यों नहीं? सभी को याद होगी कहानी। तो वो भगवान जी के पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं कि आप थकते नहीं, कभी आपको रेस्ट करने की इच्छा नहीं? तो भगवान जी कहते कि नहीं, इच्छा तो है लेकिन मेरे यहाँ खड़ा रहने वाला चाहिए ना कोई ना कोई। तो बोलता मैं हूं ना, भक्त बोलता मैं हूं ना, और वो भगवान जी की जगह खड़ा हो जाता है। और वो भगवान जी कहते हैं कि आपको साक्षी होके देखना है, कुछ करना नहीं है, एकदम सब प्रोग्राम सेट है, जो भी हो रहा है, जो भी फरियाद लेके आएंगे, कुछ भी बोलना नहीं है। लेकिन तो दूसरे दिन फिर क्या होता है कि एक बिजनेसमैन आते हैं, बिजनेसमैन तो वो भगवान जी का रोज पूजा करते हैं कि आप कारोबार अच्छा चल रहा है, अच्छी कमाई चल रही है, थैंक यू करने रोज आते हैं। लेकिन माथा टेकते वक्त उनका पर्स गिर जाता है तो और चल जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर दूसरा एक आता है गरीब व्यक्ति, उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो भगवान जी से मांगता है तो उसको वो पर्स दिखता है तो उस पर नजर, तो वो समझता है कि भगवान जी की कृपा होगी, मुझे बटुआ मिल गया, पर्स मिल गया, तो वो चल देता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है जिसको विदेश यात्रा में जाना होता है, वो आशीर्वाद लेने आता है तो जो पहले जिसका पर्स गिरा होता है वो आता है उसी समय कि वो उसको पूछता है आपने मेरा पर्स देखा होगा, ले लिया होगा, दीजिए। लेकिन बोलता वो बोलता है नहीं मैंने तो लिया ही नहीं, देखा ही नहीं। वो पुलिस कंप्लेन कर देता, पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ के ले जाती। तो भोला भगत तो पहली दूसरी घटना में नहीं बोला, जैसे पर्स गिरा गरीब को मिल गया, लेकिन तीसरी घटना में वो बोल देता है कि नहीं नहीं ये निर्दोष है जिसको ले जाते हैं पुलिस। तो फिर वहां साक्षी दृष्टा की जो स्थिति वो भंग हो जाती है। तो फिर भगवान श्याम को जब भगवान जी आते हैं रिटर्न, उनको बताता है भोला क्या है, मैंने तो बहुत अच्छा किया आज, एक भगत एक मतलब कुछ गलत होने से बचा दिया। तो भगवान जी कहते ये तो तुमने गड़बड़ कर दिया। तो ये ड्रामा पूरा सेट था, बिजनेसमैन के जो पैसे गए तो कोई बड़ी बात नहीं थी थोड़ा, और जो गरीब को मिल गया तो अच्छा ही था, और जो तीसरा जो विदेश जाने वाला उसका दुर्घटना होने वाली थी प्लेन, तो इस प्रकार वो बताता है कि आपको बोलना नहीं था। तो ये साक्षी दृष्टा की कहानी भक्ति मार्ग में बताया जाती है। और दूसरा जैसे बाबा का जो अनुभव है अव्यक्त मुरली में साक्षी दृष्टा का, जब संदेश आते थे संदेशियों के द्वारा, तो किसी ने पूछा गया कि बाबा अपना अनुभव सुनाओ, आप कैसे शरीर छोड़े, तो उसमें साक्षी होके कैसे बाबा ने शरीर छोड़ते हुए अपने आप को देखा वो अनुभव सुनाया है। कि जैसे 15-20 मिनट का कोई खेल था और उसमें योग बल और कर्म भोग की कैसी मल्ल युद्ध चल रही है वो बाबा देख रहे थे, और उसमें कर्म भोग हार खा रहा था, माना जो भी दर्द थोड़ा बहुत रहा होगा बहुत ज्यादा, और योग बल की जीत हो रही है, और कैसे उनका शरीर धीरे धीरे, क्योंकि इसको बाबा की खींच रहे, शिव बाबा उसको खींच रहे आ जाओ, और बाबा इधर तैयारी में मलयुद्ध चल रहा है। हाँ, तो उस समय का अनुभव संदेश में है कि कैसे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और भां भां की आवाज आ रही है, तो ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। और फिर अशरीर, एक तो अशरीरी बन रहे, एकदम आत्मा शरीर डिटेच हो रही है, वो अनुभव उनको हो रहा था। तो एकदम साक्षी होके देखा था, तो वो अनुभव बाबा ने ये सुनाया, वो 7 या 8 नंबर का संदेश है, उसमें ये है। तो इस प्रकार बाबा ने भी ये साक्षी दृष्टा अभ्यास एक हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है कि हम भी कैसे अपने पार्ट से साक्षी रहे। फिर तीसरी एक कहानी आती है महाभारत में साक्षी दृष्टा की, कि बर्बरिक की, कि सभी पांडव विजय होने के बाद सभी अपने अपने बड़ाई कर रहे थे कि मेरे कारण जीत हुई, माना अर्जुन बोल रहा था कि मेरे तीर से ही सारा हो रहा था, भीम बोल रहा है तो मैंने गदा से ही बहुतों को मारा, तो सब अपनी बड़ाई कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण आके बोलते नहीं, इसमें वो बोलते कि जिसने साक्षियों के ये देखा होगा पूरा वही बता सकता है, कि तो उसको पता था कि साक्षी माना ये जैसे ये जो घटना बताई जाती है कि जो भीम है, भीम का नाती बर्बरिक माना हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच का पुत्र, तो उसने वो साक्षी होके देखा था। तो ये घटना उसने बताया कि सब सुदर्शन चक्र से ही हो रहा था, ये तो निमित्त मात्र से, जहां भी जो तीर लगता था वहां सुदर्शन चक्र आ जाता था और ये सब हो रहा था। मना कराने वाला कौन है? एक भगवान। तो हम भी अगर अपने जो भी सेवा करते हैं या जो भी ड्यूटी मिली है तो वहां अगर मैपन मिक्स कर देते कि मैं ही कर रहा हूं तो फिर वही तो अहंकार आ जाता है। और एक साक्षी, तो साक्षी दृष्टा बनने के लिए करण करावना हर बाबा है। जैसे उसमें भी गोवर्धन पर्वत उठाने में भी सभी की उंगली थी, सभी सहयोग की उंगली लगाए थे, तो बाद में लास्ट में कहते कि आप जो भी ग्वाल बाल होते अपनी अपनी लाठी भी लगाते, तो श्री कृष्ण को बोलते आप चले जाओ हम लाठी पकड़ के रखते, लेकिन जब भी उंगली हटाता था गिरने लगता था। तो वो समझ रहे थे ग्वाल वाल की हमारे कारण ये पर्वत टिका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेन जो भी है बाबा ही कराता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है सहयोग के लिए, जो भी डिपार्टमेंट मिला है सेवा मिली है एकदम कठपुतली समझ के हमको करना है। करण करावन हार बाबा है, इसमें सेवा में मैपियन मिक्स नहीं होना चाहिए। तो साक्षी दृष्टा बनने की जो जो निशानी है, साक्षी दृष्टा कौन होंगे? तो साक्षी दृष्टा वही होंगे जो बुद्धि से उपराम होंगे, माना इस दुनिया की जो भी वस्तु वैभव व्यक्ति से माना लगाव झुकाव नहीं रहेगा, एकदम मुक्त रहेंगे, उपराम रहेंगे, उपराम स्थिति रहेंगे। कर्म दूसरा है, कर्म बंधन मुक्त होंगे साक्षी दृष्टा वाले, कर्म बंधन मुक्त होंगे माना बंधन उन्हें कोई खींचेगा नहीं, कर्मों के बंधन से मुक्त रहेंगे। हरेक के पार्ट को देख हर्षित रहेंगे, ऐसा नहीं उनकी किसी की भी कमियां नहीं देखेंगे, तो साक्षी दृष्टा वाला होंगे। जैसे बाबा किसी की कमी नहीं देखता, सभी को चुना है बाबा ने, कमियां होते हुए भी, तो ऐसे साक्षी दृष्टा वाले भी किसी की कमियां नहीं देखेंगे। नष्टो मोह होंगे साक्षी दृष्टा वाले, किसी में मोह नहीं रहेगा, एकदम निर्मोही होंगे। फिर निश्चय बुद्धि होंगे साक्षी दृष्टा वाले, उनको संशय नहीं आएगा कोई भी बात में या बाबा की बात में या ब्राह्मण परिवार में संशय नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये साक्षी दृष्टा की निशानियां हैं। और साक्षी दृष्टा स्थिति जो बाबा ने इस प्रश्न में बताई खास, कि भय और चोरी का जो वातावरण है इससे कैसे बचे, तो ये स्थिति अगर परिपक्व हो जाती है तो इसके जो सहयोगी स्थितियां हैं, जैसे आत्माभिमानी स्थिति, फिर है बीज रूप स्थिति, कंबाइंड स्थिति, देय अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति और उपराम स्थिति, ऐसी जो अन्य स्थितियां हैं जिसे हम निर्बंधन बन सकते हैं, साक्षी दृष्टा बन सकते हैं, और अचल अडोल एकरस स्थिति। तो इन स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं तो ये हमें साक्षी दृष्टा बनने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये साक्षी दृष्टा का अभ्यास हमें करना होगा, तभी हम भय और चोरी की जो भी घटनाएं होती है या आगे चल के आएंगी ऐसी परिस्थितियां, तो उससे हम उपराम हो सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि वो लोग आएंगे मारने के लिए, हाँ, लेकिन आप अगर स्थिति में रहते थे, अशरीर स्थिति में रहते हैं या अपनी साक्षी दृष्टा, उनको ऐसा अनुभव होगा कि ये गायब हो गए, हाँ, उनको एक लाइट ही दिखाई दे रहे, हाँ हाँ, तो वो सोचते रह जाएंगे कि ये अभी अभी क्या था और अभी अभी, उनको मैंने भ्रम पैदा हो जाएगा, हाँ वो खुद डर जाएंगे। तो तो ये मेन हमारी स्थिति है कि ऐसी अनेक परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उस समय जो भी सामान लेंगे तो उस सामान ही उनको मतलब उनका सामना कर लेगा। तो हाँ 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 तो और भी अनेक युक्तियां हैं डर और भय से। हाँ, तो मम्मा पूरा सोमान में रहती थी ना, वो कहाँ की घटना एक, जब अमृतसर सभी आ गए सेंटर के बाहर कि हाँ, और कौन है मम्मा बुलाओ, लेकिन मम्मा तो एकदम निश्चिंत अवस्था में थी, एकरस अडोल योग में थी, बाबा की आदमी, और गेट बंद था, गेट के बाहर हंगामा चल रहा था। बाद में कुछ उनके जो मुख्य लोग गए थे मम्मा के आगे कि उनको परमिशन दिया है, तो देखते ही सब शांत हो गए कि ये तो शेर नहीं सकती है, जगत अम्बा है, वो अपने आप को बच्चे फील करने लगे, और उनकी स्थिति जो क्रोध की अग्नि थी वो एकदम शांत हो गई, और मामा करने लगे वो भी मम्मा को। तो ऐसी ये योग का प्रभाव होता है। हाँ, आत्मिक स्थिति में अगर हम देखते हैं उनको तो वो प्रभाव हमारा पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति आगे चल के हमारे सामने भी आएंगी, तो ये बाबा पहले से ही सावधानियां दे दिए कि अभ्यास करो। तो ये अभ्यास ही मेन है, साक्षी दृष्टा। अच्छा, ओम शांति।
यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे